Şitilj. Şitilj. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम की एक और दिलचस्प कड़ी लिए हम उपस्थित हैं, जिसमें आप समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। हमारे श्रोता अच्छी तरह से जानते हैं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय के सहयोग से मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व हिंदी सचिवालय से जुड़े हुई अनेक हिंदी विधा को लेकर, हिंदी की विभिन्न विधाओं को लेकर जो भी गतिविधियां भारत और भारत से बाहर विदेशों से आए जितने हमारे मेहमान होते हैं, उनसे हम आप लोगों का साक्षात्कार करवाते हैं। इस तहत आज हमारे साथ, हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, आप हैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी, जो भारत की बेटी हैं, सूरीनाम की बहू हैं और नीदरलैंड में आजकल वे कार्यरत हैं। आपका स्टूडियो में स्वागत है रितु पांडे जी, डॉक्टर रितु पांडे जी, और बहुत खुशी है कि हम अपने श्रोताओं से आपका साक्षात्कार आज करवा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। विश्व हिंदी सचिवालय और क्षितिज कार्यक्रम के श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम।
मैं कुछ बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी के बारे में। आप सूरीनाम में हिंदी परिषद सभा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और मॉरिशस में 11 तारीख को विश्व हिंदी सचिवालय में हिंदी भाषा को लेकर जो है एक गतिविधि का जो आयोजन किया गया है, उसमें आप शिरकत करने के लिए जो हैं वो मॉरिशस में आई हुई हैं, और नीदरलैंड में आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन की अध्यक्षा के रूप में कार्यरत हैं। तो हमारे श्रोताओं के लिए मैं कहूँगी, जितना भी मैं कहती जाऊँ बस ना होगा, समय के अभाव के कारण मैं आपके लिए सीधा प्रश्न की ओर बढ़ूँगी। और हमारे श्रोताओं के लिए जो है ये बहुत कहें एक अचंभे की बात भी है, और बहुत हमारे लोग जो हैं यहाँ के लोग सूरीनाम फिजी की बात चर्चा करते रहते हैं, आप जबकि वहाँ की बहू हैं तो हिंदी से जुड़ी हुई हैं और हिंदी परिषद सभा की अध्यक्षा का प्रतिनिधित्व जो कर रही हैं उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वहाँ पर हिंदी जो है उसका पठन पाठन कैसे होता है और कैसे जो है वहाँ के लोग जो हैं इसको लेते हैं, क्या उसकी स्थिति वहाँ पर है।
बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सूरीनाम में हिंदी कैसे आई। तो जैसे मॉरिशस में हिंदी आई, हमारे पूर्वज 152 वर्ष पूर्व गए तो अपने साथ साथ अपनी धर्म, संस्कृति और भाषा को भी ले गए, तो हिंदी का पदार्पण वहाँ पर हो गया था। एक बीज जो ले गए थे, क्योंकि वो शायद साक्षर नहीं थे लेकिन ज्ञानी बहुत थे।
बिल्कुल।
तो उन्होंने जब हिंदी, जब उनका हो गया कि 5 साल का अनुबंध हमारा ख़त्म हो गया और अब हमको यही रहना है, तो उन्होंने सोचा अब अपने बच्चों को हमारी संस्कृति और भाषा की शिक्षा दी जाए।
बिल्कुल।
तो जैसे यहाँ बैठका होती थी वहाँ भी होती थी घरों में, फिर जैसे
पेड़ों
जैसे
के नीचे,
पेड़ों के नीचे और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं मंदिरों में, यहाँ ऐसे होती थी। फिर जब जैसे जैसे समय बीता तो ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब बच्चों को एक व्यवस्थित रूप में हिंदी की शिक्षा दी जाए। लेकिन क्योंकि सूरीनाम जो था वो नीदरलैंड के अधीन था डच सरकार के, और सूरीनाम में अभी भी राजकाज और शिक्षा की भाषा, और नीदरलैंड में भी डच है, किसी दूसरी तीसरी भाषा को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। तब वहाँ पे शिक्षा मंत्री जो बने थे उस समय, उन्होंने नाम सुना था बाबू महातम का, 1960 में गए थे गयाना। तो वहाँ पर गयाना में बहुत लोगों ने उस समय हिंदी सीखी, तो जो मिनिस्टर थे आर एन ननन पांडे, उनको लगा अरे इनको तो यहाँ भी बुलाना चाहिए।
अच्छा।
तो उन्होंने भारत सरकार से
अनुरोध करके
उन्हें बुलाया 3 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष में शायद बाबू महातम जी ने ऐसा जादू चलाया कि उनको दोबारा बुलाना पड़ा, उनका समय जब ख़त्म हो गया था, और फिर वो पूरी ज़िंदगी सूरीनाम में रहे। और सूरीनाम का मैं कहूँ जो बीज भारतीय लेकर आए थे उसको सूरीनाम में पुष्पित पल्लवित,
उनके उनका बहुत बड़ा योगदान।
बिल्कुल,
ये बहुत अच्छी बात है। तो आजकल बच्चे जो हैं हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि डच भाषा वहाँ पर जो आपने बताया सरकारी भाषा है, ऐसे में हिंदी भाषा की स्थिति क्या है और क्या कैसे वहाँ पठन पाठन होता है?
स्थिति के बारे में देखिए, घर में हम लोग जैसे हैं, यहाँ पर आप लोग भोजपुरी के जैसी हिंदी बोलते हैं, पूरी भोजपुरी नहीं है, तो हम लोग भी घर में सरनामी हिंदी बोलते हैं।
सरनामी
हिंदी उसको कहते हैं। कहाँ गए, कैसन बाती, कहाँ गई ल,
भोजपुरी।
हाँ, भोजपुरी के बहुत पास, लेकिन समय के चलते चलते उसमें बहुत सारे क्रियोल के और डच भाषा के शब्द भी आ गए,
शामिल हो गए।
हाँ, तो पहली जो प्राथमिकता थी पहली तीन पीढ़ी की, वो थी अपनी भाषा का ज्ञान देना, हिंदी का।
बिल्कुल।
तो उन्होंने डच भाषा के साथ साथ हिंदी का ज्ञान दिया। तीसरी भाषा के बाद जो प्राथमिकता बनी, क्योंकि तब तक वो बहुत व्यवस्थित हो गए थे, वहाँ पर रोजगार भी था, घर भी था, सब कुछ था। तीसरी जब पीढ़ी आई तो उस समय हिप्पी प्रभाव था।
अच्छा।
तो उस समय के जो बच्चे थे वो, उनका थोड़ा सा कम हो गया हिंदी के लिए लगाव। और दूसरी तरफ जो हमारे आर्य समाज के जो संस्थापक थे वहाँ पर गए, और भारत से जो लोग जाते थे उनको सुनकर अभिभावकों के मन में था कि हिंदी ही हमारी पहचान है। हाँ, तो आर्य दिवाकर में वहाँ पर शुरू हुई हिंदी। फिर स्वयंसेवी संस्थाएं वहाँ पर खुली, जहाँ पर जिसमें एक सुरीनाम हिंदी परिषद है, अगले वर्ष 50 साल हो जाएंगे। तो लोगों ने कहा हमें पैसा नहीं चाहिए, अगर हमें एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम मिल जाए तो उसकी मदद से हम जो भी बच्चे आना चाहेंगे, जो भी लोग हिंदी सीखना चाहेंगे, उम्र का कुछ नहीं है, जो भी किसी भी उम्र के, तो भारतीय दूतावास की तरफ से उनको सहायता मिली। और सहायता में ये था कि पाठ्यक्रम वहाँ हुआ, दूतावास के माध्यम से भी हिंदी पढ़ाई जाने लगी, तब स्थिति अच्छी हो गई थी।
तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या क्या स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है?
नहीं, हिंदी
प्राइवेट है। अगर बच्चे इम्तहान देना चाहते हैं, मतलब अगर जो आपने कहा जब हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई तो उसकी कोई व्यवस्थित
पाठ्यक्रम
होगा जिसमें वो इम्तहान देते होंगे, ताकि उनके पास एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र हो कि उन्होंने हिंदी पढ़ी है, तो वो जो है आपकी हिंदी परिषद सभा ही सब कार्यभार जो है भार जो है वो संभालती है।
या सुरीनाम हिंदी परिषद है और नव जागरण करके है, एक आर्य दिवाकर है, कुछ संस्थाएं हैं, ये सारी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं और भारतीय दूतावास केंद्र है। तो जो पाठ्यक्रम है, परीक्षाएं, हम पाठ्य पुस्तकें हमें वहीं से मिलती हैं, तो परीक्षाएं होती हैं यहाँ पर।
अच्छा।
और उसमें
तो उन सब की पढ़ाई जो है वो कैसे चलती है, कहाँ चलती है?
उन सब की पढ़ाई जो इनके केंद्र हैं।
अच्छा।
और स्वयंसेवी जो शिक्षक हैं, अगर तो आपके घर के आसपास के आपके पास 5 बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, और बहुत दूर उनको जाना पड़ रहा है, तो वो आपके घर में जगह है वहाँ होगी।
अच्छा।
या आपके घर के पास जो मंदिर है या सामूहिक
कोई भी संस्था है,
वहाँ
कोई स्थान है जहाँ कोई स्वेच्छा से देता हो,
तो
वहाँ बैठकर
पढ़ाया जाता है।
अच्छा।
और सुरीनाम हिंदी परिषद में लेकिन सप्ताहांत में पढ़ाया जाता है, क्योंकि
स्वाभाविक है, क्योंकि स्कूलों में नहीं है, तो उसके बाद जो है सप्ताहांत
में भी। और जो स्वयंसेवी शिक्षक हैं वो भी काम करते हैं।
अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यही रहा कि हमारे जितने भी हिंदी भाषी थे जब वो अन्य देशों में गए, तो उन्होंने स्वेच्छा से अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए बहुत परिश्रम किए हैं, और आज इसीलिए विश्व में हिंदी का स्थान जो है, अगर हम न कहें तो तीसरे स्थान पर आती है, तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जाकर अपने भारतीयों ने जो है जाकर हिंदी को कायम रखा है ऐसे ही। अच्छा, अब आप जो है नीदरलैंड से जुड़ी हुई हैं, तो नीदरलैंड में और में भी डच भाषा का ही प्रयोग होता है
जी,
तो वहाँ पर स्थिति क्या आपके सुरीनाम से थोड़ी सी अलग है, कैसी है वहाँ पर?
हाँ, सुरीनाम से थोड़ी बेहतर है नीदरलैंड में स्थिति, क्योंकि नीदरलैंड में 1400 में संस्कृत भाषा का पदार्पण हो गया था।
अच्छा।
तो एक जो पहचान थी संस्कृत भाषा से हिंदी की हुई, और उसके बाद जब आपको मालूम ही है कि डच लोग भारत गए थे और लेकर आए, तो जो प्रवासी भारतीय थे सुरीनाम वाले गिरमिटिया लोग, वही लोग 1975 में सुरीनाम आज़ाद हो गया था नीदरलैंड से, तो वही लोगों की प्राथमिकता बनी कि नीदरलैंड आने के लिए।
अच्छा।
तो उन लोगों ने ही फिर वहाँ पर नीदरलैंड हिंदी परिषद की स्थापना की और हिंदी वहाँ पर लाए, और 1980 में वहाँ पर जो सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी है लाइडन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इसका एक विभाग था हिंदी का।
अच्छा।
लेकिन बाद में लोगों को लगा कि पहले रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और विश्वविद्यालयों में जो हिंदी पढ़ाई जाती है उसका स्तर हमारी इस वाली शिक्षा से बहुत ऊंचा था, तो कालांतर में वो बंद हो गया। लेकिन जैसे सुरीनाम हिंदी परिषद चल रहा है, वैसे ही हिंदी परिषद भी चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन भी चल रहा है,
जहाँ की आप अध्यक्ष हैं।
जी हाँ,
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड की जो
ये भी चल रहा है। और बच्चों को मैं हम लोग कोरोना के बाद ये सुविधा हो गई कि ऑनलाइन,
हाँ,
तो वो किसी भी समय एक समय हो निर्धारित करते हैं हम शनिवार को।
अच्छा।
और ऑनलाइन देते हैं शिक्षा, और जो पाठ्यक्रम होता है वो पोस्ट द्वारा उन तक पहुंचाया जाता है। इस बार भी अभी परीक्षा हुई है 2 हफ्ते पहले, और तकरीबन 1200 छात्र बैठे हैं।
हाँ, बहुत खुशी की बात है, 1200 छात्र बहुत बड़ी संख्या है।
जी।
किसी देश में, छोटे से देश में, नीदरलैंड जैसे देश में इतने बच्चों की संख्या हिंदी में पढ़ना बहुत बड़ी बात है।
इसमें एक जो हिंदी के लिए जो लगाव आया नई जनरेशन का, चौथी और पांचवी पीढ़ी का, उसमें भारतीय सिनेमा का भी बहुत योगदान है। मुझे
मैं समझती हूँ भारतीय सिनेमा ने हिंदी के प्रचार प्रसार में संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जीवित रखने में अपना बहुत योगदान दिया, इसे कोई नकार नहीं सकता।
जीवित भी रखा, और उन्होंने, अगर आप सीधे सीधे किसी को बोलेंगे कि आप कक्षा बोले, अगर आप सीधी हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है, लेकिन भारतीय सिनेमा के माध्यम से वो शिष्ट बन गई, क्लिष्ट नहीं बनी।
खेल खेल में, जैसे
हाँ,
वो गाने गाने में,
हाँ,
या किसी तरह के डायलॉग्स में समझ लीजिए,
हाँ,
या किसी तरह के भाषा में, वेशभूषा में, या पर्वों में कुछ लेकर कहीं ना कहीं वो जो है उससे जुड़कर उसमें दिलचस्पी वो लेते हैं, वो रोचक से उनके लिए बन जाता।
और दूसरा, जब PIO कार्ड और OCI कार्ड का चलन हुआ तो बहुत ही अच्छा रहा प्रधानमंत्री योजना में। लोगों में जिज्ञासा जानी कि हम लोग भारत से आए, कहाँ से आए थे हमारे पूर्वज, कहीं तो ढूंढना है। तो उसके लिए भी, भारत आने के लिए उनको हिंदी की जानकारी चाहिए थी,
जरूरी।
हाँ, और मतलब अपनी पढ़ाई के बाद नौकरियां लग गई, उसके बाद उन्हें लगा नहीं, हमें आने वाली पीढ़ी को भी ये भाषा देनी है।
बिल्कुल।
तो भारत जाकर भी उन्होंने केंद्रीय संस्थान जो है, आगरा हुआ, वर्धा हुआ, वहाँ जाके भी हिंदी सीखते हैं।
तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और वहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं बच्चों के लिए, किस तरह का आयोजन आप करते हैं ताकि अपनी कक्षा को और भी दिलचस्प बनाएं? जैसे आपने कहा ऑनलाइन है, उसके अलावा बैठकर जैसे का प्रावधान है वहाँ पर, तो उसमें पर्व वगैरह आते हैं, तो कैसे उनको जोड़ा जाता है?
हाँ, हमारे यहाँ पर 5 हिंदू स्कूल हैं।
अच्छा।
हिंदू स्कूल है मतलब हिंदी नहीं है,
लेकिन हिंदू स्कूल है।
हाँ, जैसे सरस्वती स्कूल हो गया, सनातन धर्म स्कूल हो गया, तो वहाँ पर हम वातावरण देते हैं बच्चों को अपनी संस्कृति का।
अच्छा।
और जैसे दिवाली आ गई है तो बच्चों को तैयार कराते हैं यज्ञ के लिए।
अच्छा।
उनके साथ बैठ के यज्ञ करवाते हैं। फिर नवरात्र आते हैं, अभी दोबारा से शुरू हो जाएगा, जो भी पर्व आते हैं वो बच्चों के साथ मनाते हैं, वो भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं, और उन्हीं के ही हाथों सब करवाते हैं, मंत्रोच्चारण से लेकर आहुतियाँ तक।
हाँ, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से अगर आप देखते हैं कि नीदरलैंड हो चाहे सुरीनाम हो, सुरीनाम के बारे में तो बहुत सुना है क्योंकि वहाँ की भोजपुरी और मॉरिशस की भोजपुरी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन अपने भाषाएं जो हैं, जैसे वहाँ डच जुड़ गई, यहाँ क्रियोल जुड़ गई, तो ये सब तो होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो मुझे आपसे मिलकर और हमारे श्रोताओं से आपका साक्षात करवा के बहुत खुशी हुई कि नीदरलैंड में भी डच होने के बावजूद भी, चाहे सुरीनाम हो चाहे नीदरलैंड, क्योंकि अक्सर सुरीनाम और नीदरलैंड से हिंदी सचिवालय से जुड़ी हुई जो गतिविधियां, वहां से बच्चे बहुत भाग लेते हैं
और देख लेकर, कहने वाली थी,
हाँ, देखकर हमें बहुत खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने अपनी भाषा हिंदी को, वहां की संस्कृति, भारत की संस्कृति को, भाषा को, जो है परंपराओं को जीवित रखा है, आप आगे, आप जैसे लोग जो हैं आगे उसका और विकास, उसकी और प्रगति में अपना सहयोग देते रहेंगे। इसके लिए मैं आपको ही दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी रितु जी, और उम्मीद करती हूँ कि आपका फिर से आना होगा, और जो 11 तारीख को फंक्शन है उसमें भी आपके जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आई हैं वो पूरा होगा, और यहाँ से अच्छी यादें हिंदी को लेकर आप जाएंगी, और भविष्य में अपने देश में जो है हिंदी के लिए अग्रसर रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपका भी बहुत बहुत आभार मुझे ये अवसर देने के लिए।
हम श्रोताओं को कहेंगे, तकनीकी सहयोग अंजू दे रही थी, अपने एक और कार्यक्रम तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।